कीर्तन गान नतन पनौ
प्रेमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक संख्या 17 कृपया पीछे दोहराएं। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संधति अपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्।
एवं स्वगेह दामानि
यशोदा संदधत्यपि
गोपीनां
सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिताभवत्। एवं इस प्रकार स्वगेह दामानि अपने घर की सारी रस्सियां यशोदा माता यशोदा संदधत्यपि जोड़ती रहने पर भी गोपी नाम, जब माता यशोदा की अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखियां सुस्मयंती नाम इस तमाशे में आनंद ले रही थीं, स्मयंती माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी, विस्मिता भवत वे सारी की सारी आश्चर्यचकित थीं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस तरह माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वह कृष्ण को बांध ना पाई। पड़ोस की वृद्ध गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं मुस्कुरा रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थीं। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी, वह सभी आश्चर्यचकित थीं। तात्पर्य, वास्तव में यह विचित्र घटना थी, क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गईं और कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचतीं, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वह सभी मुस्कुरा रही थीं। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए तो यह कई 100 अंगुल हो जाती। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, तो स्वागत है आप सबका रविवार के सत्संग कार्यक्रम में। तो ये बहुत ही शुभ मास चल रहा है जिसका नाम दामोदर मास है। इस महीने भगवान ने ये लीला करी जिसका भी हमने श्लोक में वर्णन देखा। तो यहाँ इस श्लोक में ये वर्णन हो रहा है कि कैसे यशोदा मैया ने भगवान को बांधने का प्रयास किया। तो घर की सारी रस्सियां जोड़ ली यशोदा मैया ने, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को बांध नहीं पाई। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है, नहीं? कौन सी ये गणित है? तो गणित का सिद्धांत क्या कहता है हम देखेंगे। अगर मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसके अनुसार तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, नहीं? असंभव है, संभव ही नहीं है ऐसा कि इतनी बड़ी रस्सी है और उसे एक बालक को नहीं बांध पा रहे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि ये कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक प्रदर्शन है। तो कैसे भगवान अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, हम जो सोच नहीं सकते कल्पना नहीं कर सकते वो सब वो कर सकते हैं। तो ये जो दामोदर लीला है इसमें हम ये देख सकते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति का एक प्रदर्शन, कि कैसे जितने भी सृष्टि के नियम हैं जब भी चाहे उसको वो बदल सकते हैं। तो ये जैसे गणित और फिजिक्स का नियम है, नहीं? 1+1=2। तो अगर 2 रस्सी है तो मिलके वो 2 रस्सी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो उतनी ही है मतलब जोड़ने के बाद भी उतना ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यशोदा मैया ने सारी रस्सियां जोड़ दी फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही थी, हमेशा उतनी ही कम पड़ रही है। तो ये कौन सा गणित है, कौन सा गणित का नियम चल रहा है यहाँ, कौन सा फिजिक्स का नियम चल रहा है, राइट। तो इसलिए भगवान सारे नियम, क्योंकि वो ये हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा करी थी, नहीं जो पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी, भगवद्गीता का श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फल स्प्रहा। हाँ, तो भगवान कभी कर्मों के नियम में नहीं बनते, तो ये एक उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये जो लीला है दामोदर लीला में, भगवान वो चीज़ प्रदर्शित कर रहे हैं कि कैसे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, और कैसे भी करके मुझे नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि मैं नियम बनाने वाला हूँ, तो कभी भी चाहूँ तो नियम तोड़ सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान ने सारे जो भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो नियम हैं, हाँ, वो सब तोड़ दिए, पालन ही नहीं हो रहे वहाँ पे। ऐसे ही भगवान की अचिंत्य शक्ति काम कर रही है, तो सारे जो भी भौतिक जगत के नियम हैं वो उधर कार्य नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान कैसे अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमें ये विश्वास नहीं होगा तो फिर हम कभी पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाएंगे। अगर हमें पूर्ण रूप से शरणागत होना है तो उसके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं। तो ये अचिंत्य शक्ति समझना आवश्यक है। तो इसको समझाते हुए शिला प्रभुपाद हमेशा एक कहानी बताया करते थे, एक किस्सा बताया करते थे, एक ब्राह्मण और एक मोची का। तो एक बार नारद मुनि जा रहे होते हैं, तो एक ब्राह्मण होता है, वो देखते हैं नारद मुनि जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं नारद मुनि से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं वैकुंठ जा रहा हूँ, नारायण से मिलने, उनके दर्शन करने। तो ब्राह्मण उनसे प्रश्न करते हैं कि आप जा रहे हैं तो एक बार भगवान से पूछिएगा कि मैं कितना समय लगेगा मुझे वैकुंठ पहुँचने में। ब्राह्मण ये प्रश्न पूछता है नारद मुनि से। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, पूछेंगे, आपकी तरफ से हम पूछेंगे। फिर ऐसे आगे निकलते हैं, फिर एक मोची आता है, तो मोची जो होता है वो भी देखता है नारद मुनि जा रहे हैं, उनसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो बताते हैं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो जो मोची है वो भी पूछता है कि एक बार भगवान से पूछे मुझे कितना समय लगेगा वैकुंठ पहुँचने में। तो नारद मुनि बताए ठीक है, आपकी तरफ से हम पूछेंगे। तो नारद मुनि जाते हैं और भगवान नारायण से प्रश्न पूछते हैं कि ये दो आपके भक्त हैं, एक तो ब्राह्मण है और एक मोची है, तो इनमें से कौन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान डायरेक्ट उत्तर नहीं देते, बोलते ये एक प्रश्न, ये तो मैं ना उनसे जाके ये कहो कि मैं क्या कर रहा हूँ वैकुंठ में है, तो तुम उनसे कहो कि मैं एक सुई का जो छेद होता है ना, सुई के हैंडल में जो छेद होता है उससे हाथी घुसा रहा हूँ। तो नारद मुनि चौंक जाते हैं कि ये क्या कह दिया है कि सुई की जो छेद है, सुई का छोटा छिद्र है, उसमें से हाथी घुसा रहे हैं। तो नारद मुनि ठीक है, भगवान का आदेश है तो वही कहेंगे। तो जाते हैं वो, तो ब्राह्मण तो पहले पूछता है अच्छा तो आप वैकुंठ से आ रहे हैं। तो ब्राह्मण फिर ये प्रश्न करता है कि भगवान क्या कर रहे थे वहां पे। तो नारद मुनि बताते हैं कि वो सुई का जो छेद है उसमें से हाथी को निकाल लेते। तो ब्राह्मण बोलता है अरे ये क्या संभव है, हैं मजाक कर रहे हो आप। नारद मुनि बोलते हैं तो आप मजाक कर रहे हो, हैं थोड़ा गंभीरता से बताइए, मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि फिर से कहते हैं नहीं वो सच में यही कर रहे थे। तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं होता, नहीं नहीं ये संभव नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। तो नारद मुनि बोले चलो ठीक है। फिर मोची पूछता है कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि बताते हैं कि भगवान ये कर रहे थे कि वो सुई में से हाथी को निकाल रहे। तो मोची जो है वो वाह भगवान कितने महान, कुछ भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो नारद मुनि थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे मुझे को कैसे विश्वास हो गया कि भगवान ये कर रहे हैं, हैं? तो पूछते हैं कि तुम्हें सच में विश्वास है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं? तो मुची बोलते हैं हाँ क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? जब भगवान एक बरगद का इतना बड़ा पेड़, इतने बड़े पेड़ को एक छोटे से बीज में रख सकते हैं, बरगद का बीज देखा है हमने इतना छोटा होता है नहीं, उस छोटे से बीज में वो दरअसल इतना बड़ा पेड़ है उसके अंदर है, वो पोटेंसी है, वो शक्ति है उसमें। तो मुझे कहता है जब भगवान के लिए संभव है तो सुई में से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए, वो भी वो कर सकते हैं। तो फिर नारद मुनि बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं भगवान को कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। फिर भगवान स्वयं कहते हो तुम बताओ कौन पहले आएगा। तो नारद मुनि बोलते हैं मुची पहले आएगा, ब्राह्मण को तो बहुत अभी जन्म लगेंगे क्योंकि उसको अभी आपकी अचिंत्य शक्ति है उस पर विश्वास ही नहीं है, हैं? तो इस किस्से से प्रभुपाद ये समझाते थे कि कैसे हमें भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ये समझना कि भगवान महान है काफी नहीं है, भगवान है, भगवान महान है, प्रभु कितने महान है ये समझना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो कभी भी हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाएंगे। पूर्ण रूप से जो विश्वास है, अटूट विश्वास भगवान के ऊपर, ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं कैसी भी हम परिस्थिति में हो, वो विश्वास कभी हमारा डगमगाए नहीं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ये भगवान की अचिंत्य शक्तियों के बारे में समझें। इसलिए हम देखेंगे भगवद गीता में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में समझा रहे हैं। दसवां अध्याय हम देखेंगे तो उसमें भगवान अपनी सारी विभूतियां बता रहे हैं, और फिर ग्यारहवें अध्याय में भगवान अपना विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं। हाँ, तो एक बद्ध जीव के लिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा वो तो वो फिर माया की शरण में रहेगा, क्योंकि जो जीव है उसको किसी ना किसी की शरण चाहिए, हाँ शेल्टर चाहिए किसी ना किसी का। तो अगर भगवान की शरण नहीं लेता है तो फिर वो माया की शरण ही लेता है। तो उसे अगर ये पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, हाँ ईश्वर, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं हाँ कि कैसे ईश्वर परम कृष्ण, कि परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। तो ईश्वर जो संस्कृत शब्द है उसका अर्थ क्या है? नियंता। जो नियंता है उसको ईश्वर कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम सब कुछ हद तक नियंता हैं, कुछ कुछ चीजें हम नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे अगर हम कार अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कार हम बोल सकते हैं हमारे नियंत्रण में है कुछ हद तक, लेकिन फिर पता नहीं एक्सीडेंट होता है तो उस समय समझ में आता है कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, हैं? ऐसे ही हम अगर चल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत नियंत्रित, हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में है, हमारे अनुसार चल रहा है, लेकिन जब बीमारी होती है तो बाहर हो जाता है नियंत्रण से। जैसे जिनको पैरालिसिस होता है तो उनका पूरा जो शरीर है वो अनियंत्रित हो जाता है, उनके नियंत्रण में रहता ही नहीं है। तो इसलिए ये जितने भी नियंत्रण है, तथाकथित नियंत्रण है, ये क्या है? एक उसकी सीमा है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हम परम नियंता हैं। तो परम नियंता जो है वो सिर्फ कृष्ण है, अर्थात ये प्रकृति और प्रकृति के अंतर्गत जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सब, उन सब के नियंता श्री कृष्ण है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तते। मयाध्यक्षेन, ये जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो लेकिन एक बद्ध जीव उसको क्या लगता है कि कुछ चीजें मेरे नियंत्रण में हैं और मेरे नियंत्रण में नहीं तो किसी और के नियंत्रण में है। तो अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसकी शरण लेनी होगी जो और मतलब मेरे से ऊंचे पद पे है। तो इसलिए हम देखेंगे इस भौतिक जगत में एक जो कमजोर व्यक्ति है वो शक्तिशाली व्यक्ति की शरण लेने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए, लाभ चाहिए कुछ उसको। तो इसलिए हम देखेंगे कि खासकर अभी जैसे इलेक्शन का समय चल रहा है, हैं? तो इतने भी पॉलिटिशियंस हैं, हैं? वो सब आएंगे, सारे लोगों के दर खटखटाएंगे कि हमें वोट वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो, हैं? और बहुत कुछ देंगे, मतलब उनका फेवर चाहिए उनको, जनता है उसका वोट चाहिए, राइट? तो उसके लिए वो टीवी देंगे, फ्रिज देंगे, या बहुत सारे वादे करेंगे, राइट? लेकिन एक तरह से देखा है तो क्या है, वो उनको कुछ चाहिए उनसे, तो इसलिए उनके शरण में जा रहे हैं कि आप जो हमें वोट दीजिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हर कोई किसी ना किसी के पास जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए। उसे दिखता है कि मेरे पास, मेरे नियंत्रण में नहीं ये चीज, ये मेरे नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो किसके नियंत्रण में है? तो जिसके नियंत्रण में है तो उसकी शरण लेना चाहता है। लेकिन ये सब क्या है, वो ये समझता नहीं है कि वो जिसको सोच रहा है वो परम, मतलब वो नियंत्रण में है, वो भी परम नियंता नहीं है। जो परम नियंता है वो तो श्री कृष्ण है। तो जब तक परम नियंता की जानकारी नहीं होगी तब तक वो श्री कृष्ण की शरण नहीं ले पाएगा। वो ऐसे ही देखता रहेगा कि मेरा अभी क्षणिक लाभ किसके माध्यम से हो सकता है, तो उस व्यक्ति की वो शरण लेगा जो कि इस भौतिक जगत में चल रहा है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में जो भी स्वामी और सेवक के नाम पे चल रहा है, सेवा के नाम पे जो भी चलता है, वो क्या एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता, वो तो एक दिखावा है, सब अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं सेवा के नाम पे। तो जब तक व्यक्ति ज्ञान में नहीं है वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, वो हमेशा खुद का भी वो अहित करेगा, दूसरों का भी अहित करेगा। तो इसलिए शास्त्रों में ये वर्णन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर माँ अमृतम गमया, हाँ, कि तमस में मत रहो ज्योति की ओर चलो, अंधकार में मत रहो ज्योति की ओर चलो। जब तक अंधकार में रहोगे तब तक क्या, ना तो तुम खुद का भला कर सकते हो ना किसी और का भला कर सकते हो। तो ज्योति की ओर कैसे आएंगे, ये ब्रह्म ज्ञान से, हाँ, जो भगवद गीता का और श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है वो जब हम अर्जित करेंगे और उस ज्ञान चक्षु से हम चीजों को देखेंगे, तभी ये संभव है कि हम खुद का हित कर सकेंगे और दूसरों का भी हित कर सकेंगे। तो इसलिए शास्त्र में सबसे पहले बता रहे हैं कि जानो परम नियंता, परम सत्य है। ऐसा नहीं कि कोई सब ये जो सृष्टि है बाय चांस चल रही है। तो देखिए भगवान का नियंत्रण कैसा, कितना कमाल का नियंत्रण है, मतलब हर चीज नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये सब बाय चांस चल रहा है, ये भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुई बाय चांस, है, और कैसे चल रहा है बाय चांस, बस नियम कहते से आ गए बस, और हम उसको समझ लेंगे और समझ के हम जो है नियंता बन जाएंगे। तो पूरा जो आधुनिक विज्ञान है वो इसी विचारधारा पे आधारित है कि हम अगर, हमें सृष्टि के नियमों को समझना है, प्रकृति के नियमों को समझना है, क्यों, उसे जान के फिर हम अपने अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसको अपने अनुसार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम नियंता बन सकते हैं। और ये भ्रम जो है टेक्नोलॉजी, जो हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी बढ़ाता है ये भ्रम कि हम हमारे नियंत्रण में हैं चीज़ें, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है, प्रगति से हम और पूरे अपना नियंत्रण जो है उसको, उसका दायरे को बढ़ा सकते हैं। तो हम एक जगह पे बैठ के भी रिमोट कंट्रोल से कहीं बहुत दूर कोई चीज़ उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नासा है, तो नासा यहाँ धरती धरती पे उसका हेड ऑफिस है, तो वहाँ से वो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक वो ना नियंत्रण, देखो कितना नियंत्रण है, तो कितना एडवांसमेंट कर लिया है टेक्नोलॉजी ने, राइट? तो ये जो हमारा ये भ्रम है नियंता होने का और एक प्रयास परम नियंता बनने का, उसको ये बढ़ाता है। हाँ, जो आधुनिक एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन जो है, ये उस भ्रम को बढ़ाता है। तो इसलिए सही मायने में ये जो भी एजुकेशन के नाम पे चल रहा है वो सही मायने में एजुकेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि वो भ्रम को बढ़ा रहा है। एजुकेशन मतलब क्या है? विद्या का अर्थ है जो भ्रम से निकाले, हाँ, ना कि मतलब धोखे से निकाले और धोखे में डाल रहे, तो वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है ना। इसलिए शास्त्रों में दो शब्द हैं, विद्या और अविद्या। तो ये सिर्फ भौतिक तत्वों का ज्ञान होना वो अविद्या है। आत्मा और भौतिक तत्व दोनों को जानना और दोनों में अंतर समझना, ये सही मायने में ज्ञान है, विद्या है। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं, क्योंकि लोगों को अभी ये विद्या नहीं है, सब अविद्या में है, तो भगवान को शरणागत नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, हैं, जो समझ नहीं पा रहे कि एक परम नियंता है, तो भगवान का देखिए कितना बढ़िया नियंत्रण है, हैं, कि बहुत ही ऐसे बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, MIT से, IIT से हैं, पास्ड आउट, बड़े बड़े, बहुत सारे उनके पास भौतिक उपलब्धियां हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पा रहे, सिंपल चीज जो भक्त समझ सकते हैं, कि कैसे श्री कृष्ण हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, कैसे वो परम नियंता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जो नास्तिक वर्ग है बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। हाँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई परम नियंता नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, और मैं इन सबको समझ के मैं नियंत्रित कर लूंगा, तो उनका जीवन हमेशा भ्रम में ही रहता है, धोखे में ही जीते रहते हैं। और धोखा कब टूटता है? मृत्यु के समय। मृत्यु के समय हर एक का धोखा टूटता है। तो श्रील प्रभुपाद ये भी एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, हाँ, कि कैसे ऐसे जो अहंकारी मूड हैं, हाँ, उनका भ्रम कैसे टूटता है। तो श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक नाविक होता है ना, हम देखेंगे ना, ये भारत में बहुत सारी नदियां हैं, राइट, तो एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है तो उसके लिए नाव रहती है ना, तो नाविक है। तो ऐसे एक नाविक होता है, तो एक बहुत ही ऐसी मॉडर्न एजुकेशन मिला हुआ एक व्यक्ति है ना, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और बहुत क्वालिफाइड, PhD है, वो आता है नाव पर सवार होता है, उसको दूसरे छोर पे जाने के लिए उस नाव पे सवार होता है। तो ऐसे नाविक जो है उसको ले जा रहा होता है नाव पे, तो ये जो व्यक्ति है मॉडर्न एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड व्यक्ति, ये नाविक से पूछता है कि नाविक तुम्हें गणित का ज्ञान है, है क्या, तुम्हें मैथमेटिक्स पता है? तो नाविक बोलता है, हाँ मुझे तो जोड़ना घटाना आता है, जो लोग इतना पैसा देते हैं कितना पैसा उसे गिनना आता है और कितना लेना है कितना देना है वो मुझे समझ में आता है, उतना करते हैं। तो बोलते क्या, बस इतना ही, तुमने कभी कैलकुलस नहीं पढ़ी है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन और एल्जेब्रा है, ये सब नहीं पढ़ा तुमने? तो नाविक बोलता है, ये क्या बोल रहे हो, ये तो सब मैंने सुना ही नहीं कभी, ये तो नए नाम है मेरे लिए, एल्जेब्रा, कैलकुलस, ये क्या है? तो बोलता है कि तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ हो गया है, क्योंकि तुमने गणित की पढ़ाई नहीं करी। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस ये वेल एजुकेटेड PhD नाविक से पूछता है, क्या तुमने एरोडायनेमिक्स पढ़ा है? बोलते एरोडायनेमिक्स ये क्या है? ये कि कैसे ये जो नाव है नाव कैसे चलनी है, जो जहाज है वो कैसे चलने है कि हवा के रुख से वो प्रभावित ना हो। तो नाविक बोलता है भाई ये सब तो क्या है, वो तो जैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो हम नाव रोक देते हैं, नाव चलाते नहीं है, है उसमें क्या इतना एरोडायनामिक्स और ये सब। तो वो बोलता है तुम्हें एरोडायनामिक्स नहीं पता, तुम्हारे तो बहुत जरूरी है नाव, तुम नाव चला रहे हो हैं, पता होना चाहिए उसको, तो तुम्हें ये भी नहीं पता तो इसका मतलब तुम्हारा 50% जीवन खराब हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से नाव चलाते रहते हैं, फिर थोड़ी देर वापस से पूछता है कि क्या तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान है, मतलब फिजिक्स ये क्या है तुम्हें, अरे तुम्हें ये भी नहीं पता। तो फिर वो बोलता है तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा 75% जीवन खराब हो गया, कुछ भी नहीं पता तुम्हें, एक नंबर के मूर्ख हो तुम है। ये PhD जो है नाविक को कहता है कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। वो बोलता है 75% जीवन व्यर्थ हो गया है। अब इतने में क्या होता है, इतने में तूफान आने लगता है, आंधी तूफान बादल गरजने लगते हैं है? और नाविक को दिखता है अरे अब तो बहुत तेज तूफान आने वाला है। तो नाविक PhD होल्डर से पूछता है कि क्या आपको तैरना आता है। तो बोलता है तैरना नहीं, तैरना तो नहीं आता मुझे। हेलो, तो तुम्हारा 100% जीवन खराब। और नाविक तो खुद जाता है और ये डूब जाता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति है, जो नास्तिक लोग हैं वो इसी प्रकार है ना, बड़ी बड़ी डिग्री PhD और पूरे अहंकार से कि देखो कोई भगवान नहीं है, आत्मा आत्मा ये सब फालतू है, ये सब कोई ये सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन क्या होगा जब मृत्यु आएगी, मृत्यु के समय जो भी उनका ज्ञान है कुछ भी काम जाने वाला, सब व्यर्थ जाएगा। और उस अहंकार में जितने पाप कार्य किए वो सब जाएगा साथ में, उस सबके फल जो हैं वो भुगतने होंगे भविष्य में। लेकिन जो भक्त है हाँ, हो सकता है उसको इतना भौतिक विषय भौतिक जगत के बारे में इतना कुछ डिटेल ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे पता है कि कृष्ण है और मृत्यु के समय वो कृष्ण का चिंतन करता है, तो वो कृष्ण के पास जाएगा, उसको फिर भौतिक जगत में नहीं आना। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन्म। तो जो मेरे इस भौतिक जगत में अवतरित होने को और मेरे सारे कार्यों को दिव्य स्तर पे है समझता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए पुनर्जन्म नहीं है। और समझना मुश्किल है, जैसे हम इस लीला में देखेंगे, जैसे दामोदर लीला है तो इसमें क्या है, भगवान एक सामान्य बालक के रूप में है, और यहाँ बता रहे बालक मतलब बहुत छोटे छोटे हाथों वाले बालक, राइट, बिल्कुल वेरी स्मॉल। अभी वो इतना छोटा बालक है लेकिन यशोदा मैया उनको बांध नहीं पा रही है, तो ये कैसे। तो इसलिए जो नास्तिक लोग हैं वो तो कभी नहीं समझ सकते इस चीज को, जो भक्त हैं उनके लिए संभावना है कि वो समझ सकते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ भगवान यशोदा मैया के साथ वात्सल्य रस में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनके बालक बने हुए, लेकिन वो बालक के रूप में भी भगवान है। ऐसा नहीं है कि अभी वो बालक है तो उनकी शक्तियां भी कम हो गई या वो भूल गए। हाँ, तो इसलिए ऐसे मायावादियों का विचार है कि हम अभी भूल गए कि हम भगवान हैं, आत्म साक्षात्कार में जब हमें सफलता मिलेगी तो हमें ये पता चलेगा कि हम ही भगवान हैं। हाँ, तो अहम ब्रह्मास्मि कि हम ही भगवान हैं। तो लेकिन हम ये नहीं देखते कृष्ण में, हम नहीं देखते कृष्ण को भी जो है तपस्या करनी पड़ी भगवान बनने के लिए। तो भगवान जब यशोदा मैया के साथ उनकी गोदी में खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, दुग्ध पी रहे हैं और बहुत सारे शैतानियां कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो साधारण बालक हो, वो तब भी भगवान है। और जब वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, हैं? तब भी वो भगवान है, ऐसा नहीं कि वो साधारण व्यक्ति बन गए हैं। और ऐसे जब वो रासलीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तब भी वह भगवान है। तो हम ऐसा कभी नहीं देखेंगे कि भगवान को ऐसा करना पड़ा कि अब मैं तपस्या करूंगा, मेडिटेशन करूंगा और फिर मैं जानूंगा कि मैं भगवान हूं। दरअसल ये कहना कि हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं और हम कुछ करेंगे जिससे हमें याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं, ये दिखाता है कि हम समझ नहीं रहे कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है, है? तो भगवान शब्द का अर्थ है कि वो परम है, हर स्थिति में, हर स्थिति में, हर समय वो परम है, उनसे, उनके समान ना तो उनसे बढ़कर कोई है, वो भगवान है। अगर भगवान भूल जाए कि मैं भगवान हूं और फिर वो कर्म बंधन में फंसा हुआ है, हैं, दुख सुख, सुख दुख के उसमें बंधन में हैं पड़ा हुआ है, तो वो दिखाता है कि वो भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। तो वो भगवान बता रहे हैं, आत्मा जो है वो उनका अंश है। मुमे वामशो जीव लोके जीव भूत सनातनम, भगवान बता रहे हैं कि ये जितनी भी जीवात्मा है वो सारे मेरे अंश है। तो इसलिए हम गुणवत्ता में समान है भगवान के, लेकिन भगवान असीमित है और हमारी सीमाएं, हम जो हैं अंश हैं, हम लघु हैं और भगवान विभू हैं। तो ये अंतर है हम और भगवान में। अल्टीमेटली भगवान भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो परम व्यक्ति हैं और हम भी व्यक्ति हैं, हम परम नहीं हैं। ये समझना असली आत्म साक्षात्कार है। और ये सोचना कि मैं भगवान बन जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा अहंकार है जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं। तो इसलिए भगवान हर स्थिति में भगवान है, ये हमें समझना होगा। जब वो यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं तब भी वो भगवान है, हाँ, वो बालक के जैसे व्यवहार कर रहे हैं यशोदा मैया का आनंद वर्धन करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि हम सबका एक संबंध है भगवान के साथ, और उस संबंध में भगवान जो भूमिका है वो परफेक्ट भूमिका अदा करते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण हर संबंध में परफेक्ट है ना, हम देखेंगे तो जितने भी रस हैं उन रसों का आदान प्रदान जो है वो श्री कृष्ण के साथ ही संभव है पूर्ण रूप से। तो इसलिए वेदों में बताया रसो वय सह रस विग्रह, तो श्री कृष्ण क्या है, रस विग्रह, सारे रसों के स्रोत है। तो हमें जो भी आनंद की अभिलाषा है दरअसल वो हमें श्री कृष्ण की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है और किसी माध्यम से नहीं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण कौन है और कैसे उनसे हमारा संबंध जो हम भूल गए हैं उसे स्थापित करना है। हाँ, तो वो हम स्थापित कर सकें, जान सकें कि श्री कृष्ण कौन है, इसलिए भगवान आते हैं और ये सारी लीलाएं करते हैं। तो ये खासकर जो दामोदर लीला है ये भगवान आमंत्रित कर रहे हैं हमें उस लीला में भाग लेने के लिए कि हम वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे वर्णन है कि जितनी भी गोपियां हैं वो भी देख रही थी माता यशोदा मैया को ऐसे भगवान को बांधते हुए, लेकिन जब बांध ही नहीं पा रहे थे तो उनको आनंद, एक आनंद हो रहा था कि देखिए मतलब कितना प्रयास कर रहे हैं फिर भी भगवान को बांध नहीं पा रहे। और यशोदा मैया भी हंस रही थी, है ना, तो इसमें यहाँ शब्द है स्मयंती, स्मयंती, स्मयंती क्या करते मुस्काते हुए। तो यशोदा मैया भी जो है वो बहुत ही उनका भी आनंद वर्धन हो रहा था भगवान की ऐसी ऐसी क्रियाओं से। तो इसलिए भगवान अभी बालक के रूप में है, यशोदा मैया के पुत्र के रूप में, तो बिल्कुल वो ऐसी भूमिका निभा रहे जिससे यशोदा मैया का आनंद वर्धन हो। तो हम सब ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट पर्सन को, है ना, जो हमें समझ सके, हमसे प्रेम कर सके, हाँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं हो सकता। अगर हम सोचे कि हमें भौतिक जगत में ऐसा कोई संबंध मिल जाएगा जिसमें परफेक्ट हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकेंगे तो वो एक भ्रम है, संभव नहीं है वो। वो सिर्फ कृष्ण के साथ ही संभव है। तो इसलिए मनुष्य जीवन एक अवसर है उस संबंध को पुनः स्थापित करने का। तो ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें हैं इंद्रिय भोग के कार्यों में। तो जो नास्तिक लोग हैं, जो विश्वास नहीं करते, समझने का प्रयास भी नहीं करते कि परम नियंता है और परम नियंता श्री कृष्ण है, तो क्या है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशायनम, कभी उससे निकल नहीं पाएंगे। अर्थात उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सब चलती रहेंगी, और फिर वो ऐसी बातें भी करेंगे कि हैं वो सब बात करेंगे लव पीस हैं भौतिक स्तर पे कि हम जो है एक परफेक्ट सोसाइटी बनाएंगे जिसमें कोई दुख नहीं होगा, और किस आधार पे टेक्नोलॉजी को एडवांस करके हैं भगवान को पूरा केंद्र से हटा के, मतलब बिना भगवान के हमें भगवान का धाम चाहिए, कैसे संभव है? संभव नहीं है। तो वो लोग इस भ्रम में, तो खुद तो भ्रम में है, दूसरों को भी इस भ्रम में डालते रहेंगे। तो इसलिए हम जो बोलते हैं परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट समाज, वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को केंद्र में रख के ही संभव है। श्री कृष्ण को केंद्र में रखने का अर्थ है कि उस समाज में हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा हेतु, तभी वो समाज, उस समाज में शांति हो सकती है, आनंद हो सकता है। तो भगवत धाम जो है इस भौतिक जगत में भी प्रकट हो सकता है, संभव है हाँ, लेकिन उसके लिए भगवान को केंद्र में रखना होगा। अगर हमने भगवान को हटा दिया साइड में और फिर हम प्रयास कर रहे हैं सब का, पीस का, लव का, है, तो ये सब सारे प्रयास विफल होंगे, ये कभी भी सफल नहीं होने वाले। तो इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक जो दार्शनिक हैं वो सब, कई लोग हैं जो इस बारे में विचार कर रहे हैं कैसे हम ऐसा समाज बनाए जो सुखी और संपन्न हो, जिसमें कोई ऐसी परेशानियां ना हो। जो आधुनिक समाज जूझ रहा है परेशानियों से, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे क्राइम रेट बढ़ रही है, हैं स्त्रियों को है सुरक्षा नहीं है, और ऐसे ही हर जगह चीटिंग, बहुत धोखेबाजी हो रही है। तो इस तरह से कैसे हम एक अच्छा समाज बना सके, ऐसे कई लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके जो भी सॉल्यूशन है वो सब अपूर्ण है, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं है। वो सब क्या सोच रहे हैं, कृष्ण को हम साइड में रख के कुछ सॉल्यूशन कर लेंगे। इसलिए हम देखेंगे आजकल ये लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे वो गलत कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, गलत आदतें पाल रहे हैं, और बहुत ही घमंडी अहंकारी हैं, ये सारे गुण उनमें आ रहे हैं, बड़ों की नहीं सुनना, हाँ मनमानी करना। और यहाँ तक कि विदेश में हम देखेंगे कि बच्चे बंदूक लेके आ जाते हैं स्कूल में और शूटिंग कर रहे हैं, और शूटिंग कर रहे हैं उसमें जो अध्यापक गण हैं, जितने बच्चे हैं वो सब बहुत सारे मर रहे हैं उसमें। ऐसे जो स्कूल शूटिंग है बहुत अमेरिका में बहुत होती है, बहुत सारे ऐसे किस्से हो चुके हैं, और भारत में भी धीरे धीरे आ रहा है ना, आए दिन कभी कभी आता है ये न्यूज़ कि छात्र ने अध्यापक को मार दिया, राइट, ऐसे न्यूज़ आती है, है? तो लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जो विद्यार्थी मतलब जो छात्र हैं वो ऐसे इस तरह से उनमें गुण क्यों आ रहे हैं। तो फिर वो सोच रहे हैं क्योंकि हम उनको इथिक्स और वैल्यूज नहीं समझा रहे, मॉरेलिटी नैतिकता, तो इसलिए अब हम उन्हें नैतिकता का ज्ञान देंगे। तो इसलिए स्कूल कॉलेजों में भी एक इथिक्स एंड वैल्यूज करके सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं सुधरे, ऐसे बिगड़े नहीं, लेकिन वो एथिक्स और वैल्यू सब्जेक्ट जो है उसमें नैतिकता की शिक्षा है कुछ, लेकिन सब कृष्ण को हटा के, भगवान को हटा के, भगवान को पूरा साइड में रख के। तो ये जानने की आवश्यकता नहीं भगवान कौन है, हम कौन है, ये सब कोई आवश्यकता नहीं, बस एक सामान्य नैतिकता, ताकि जो है वो ऐसे गलत कार्य नहीं करें। लेकिन एक्चुअली ये संभव नहीं है। अगर कृष्ण को आपने हटा दिया तो फिर कभी भी व्यक्ति सद्गुण नहीं डेवलप कर पाएगा, विकसित नहीं कर पाएगा। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। तो जो हरि का भक्त नहीं है उसमें कभी कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता, उसमें हमेशा दुर्गुण ही होंगे। वो तथाकथित जो अच्छा गुण है वो बस एक दिखावा है। इसे हम देखेंगे विदेश में ये है, बहुत बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे और हर चीज में थैंक यू वेरी मच, इस तरह से बात, मतलब बातों में बहुत ही ऐसा लगता है तो बहुत जेंटलमैन है, लेकिन जब आप उनका व्यक्तित्व देखेंगे, उनका जब चरित्र देखेंगे तो क्या है, तीनों समय मीट खाना है, तीनों समय मांसाहार। तो इतना बहुत ही अच्छा आचरण है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, लेकिन जो बेचारे पशु हैं उन पर कोई दया भाव नहीं है, बड़े चाव से उनको प्लेट में खाते हैं, हैं? और फिर उनका निजी जीवन देखेंगे तो बहुत तनाव और उससे डिप्रेशन से ग्रस्त है ज्यादातर लोग। तो ये तनाव और डिप्रेशन जो है दरअसल जो आसुरिक चेतना है कि मैं नियंता हूं, मैं भोगता हूं, इसका परिणाम है। जितने भी जो ये स्ट्रेस एंजाइटी और ये सब आता है, भगवान गीता में बताते हैं 16वें अध्याय में कि असुरों का एक गुण होता है चिंता मपरी, अनेक चिंताएं रहती हैं उनको। क्यों चिंता रहती है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मैं ही परम नियंता हूं, परम भोगता हूं। क्योंकि वो कृष्ण के अस्तित्व को नकारते हैं तो इसलिए वो बहुत सारी चिंताओं में लिप्त हो जाते हैं और उनकी स्थिति हमेशा खराब ही रहती है। लेकिन वो ऐसे ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत मजे में हैं, बहुत आनंद में हैं, लेकिन वो बस दिखावा है। तो इसलिए अगर हमें अच्छे गुण विकसित करने हैं तो उसमें हमें भगवान कृष्ण को केंद्र में रखना होगा और ये समझना होगा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य बनना होगा। अगर मनुष्य नहीं बनेगा, मतलब अच्छे गुण विकसित करना तो बाद में आता है, पहले मनुष्य बनना चाहिए। अगर पशु के स्तर पे रह गया तो फिर वो पशु जैसे व्यवहार करेगा। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपको भी मनुष्य शरीर मिला है तो क्या करना है, इसमें परम सत्य को जानना, जानने का प्रयास करना। हाँ, तो ब्रह्म जिज्ञासा कि परम सत्य कौन है, क्या है परम सत्य, क्या है भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा और भगवान का संबंध क्या है, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, फिर क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न होने चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल कोई ये प्रश्न पूछता नहीं है और कोई अगर पूछ भी रहा है, सोच भी रहा है तो उसको एंकरेज नहीं किया, तो उसको डिस्करेज ही किया जाता है, सोचते अरे पागल हो गए, उसको तो जाता है तुम पागल बन रहे हो। अगर ये कोई प्रश्न पूछता है तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कहीं पागल तो नहीं हो गए, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह का अभी समाज हो गया है, तो पशु समाज हो गया है ना, मनुष्य नहीं है दरअसल। तो इसलिए पशुओं में हम फिर कोई अच्छे गुण एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। तो प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते थे कि अगर बहुत सारे कुत्तों को अगर हमने एक कमरे में डाल दिया तो क्या करेंगे, वो आपस में गले से मिलेंगे आपस में एक दूसरे कुत्ते, हम हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते और हम दोनों भाई भाई हैं, तो हम देखेंगे कि वो तो भौंकेंगे एक दूसरे पे, नहीं? तो इसलिए अगर पशु के स्तर पे रहेंगे तो छोटी सी बात है तो उसमें लड़ना झगड़ना और सारे जो हैं, तो पशु वृत्ति कि मेरे इंद्रिय भोग के लिए जो भी आवश्यक है वो किसी भी तरह से प्राप्त करूं। तो पशु जो है वो इसी उसमें होता है, उसको अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा, वो नहीं देखेगा कि दूसरा क्या क्या भला है। पशु ये नहीं सोचेगा, पशु उतने सोचेगा कि मेरा आहार निद्रा भय मैथुन चलना चाहिए सही से। तो अगर मनुष्य भी सिर्फ यही सोच रहा है कि आहार निद्रा भय मैथुन अच्छे से चले, तो क्या है वो पशु के स्तर पे है। और पशु जो है कभी भी उससे हम अच्छे गुण, हम उससे ये कि वो आज्ञाकारी हो और क्षमा है, टॉलरेंस, जो जितने भी देवीय गुण हैं, 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं प्रथम श्लोक में कि अहिंसा, हमें पशु से अपेक्षा नहीं कर सकते अहिंसा की। जैसे उसको कुछ खतरा लगेगा तो वो तो तुरंत खतरा भी नहीं, अगर उसको अपनी भूख मिटानी है उसको आहार के लिए वो हिंसा करेगा। जैसे हम देखेंगे शेर है, तो शेर तो हिंसा करेगा, वो हिंसा के माध्यम से जीवित रह सकता है। तो उससे हम नहीं सोच सकते अहिंसा, अहिंसा का उपदेश हम शेर को नहीं दे सकते। उसी प्रकार जो भगवद गीता का उपदेश है हम कुत्ते को नहीं दे सकते, सूअर को नहीं दे सकते, वो नहीं समझ सकता, लेकिन मनुष्य समझ सकता है। तो मनुष्य जीवन बना है इस ज्ञान को समझने के लिए, और अगर ये नहीं हो रहा है, ये प्रयास अगर नहीं हो रहा है, तो मनुष्य क्या है वो पशु के स्तर पे ही रह गया। तो उनके लिए शब्द है द्विपाद पशु, दो पैर वाले पशु है ना। पशु साधारणतः क्या है, चार पैर होते हैं पशु के, लेकिन जो मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, परम सत्य को जानने का प्रयास नहीं करता है, तो वो क्या है, वो पशु ही रहता है। और जब पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है वहां पे क्राइम रेट बढ़ने वाला है, हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी, हाँ, सारी जितने भी बुरी चीजें हैं वो सब बढ़ने वाली हैं, जो कि इंद्रिय भोग पे आधारित है। तो इसलिए ये हमें समझना होगा कि श्री कृष्ण को हमें केंद्र में रखना है। और कब व्यक्ति श्री कृष्ण को केंद्र में रख पाएगा, जब वो ये समझेगा कि वो परम नियंता है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्य संपन्न, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी शरण लेनी चाहिए हमें, और किसकी शरण लेंगे? अगर हम और किसी की शरण ले रहे हैं तो इसका मतलब हम समझे नहीं कि श्री कृष्ण कौन है। तो गीता में भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, तो उसमें आखिरी श्लोक में भगवान बताते हैं यो मामेव सम्मूढो जानाति तत्वतः स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये समझ जाता है कि मैं असम्मूढ़, असम्मूढ़ मतलब वही परम, मतलब मैं कभी कभी भी शक्ति विहीन नहीं होता, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य शक्तियों का स्वामी हूं, जो ये समझ जाता है तो क्या होता है, सर्व ससर्ववित सर्व भावेन भजते मां, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से पूरे अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है मेरी भक्ति में, है ना। तो भक्ति योग में पूरा वो संलग्न हो जाता है। तो ये लक्षण है, तो जो पूर्ण रूप से समर्पित है श्री कृष्ण के चरणों में, तो इसका अर्थ है कि वो ये चीज समझा है। और जो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, इसका अर्थ है कि वो भी नहीं समझा, वो भी इस शंका में है कि क्या सच में कृष्ण परम नियंता है, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही नियंता हूं, वो भी भ्रम जा नहीं पा रहा कि बहुत सारी चीजें मेरे नियंत्रण में है। तो जब तक वो भ्रम जाएगा नहीं, तब तक वो कृष्ण की शरण नहीं ले पाएगा। तो इसलिए मैं बार 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 ये सुनना है, श्रवण करना है और मनन करना है इस पे, और इस दृष्टिकोण से फिर देखना है जगत को, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये सही है, जो शास्त्र जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है, एग्जैक्ट बताया जा रहा है। जो सिंसियर व्यक्ति है वो ये देख सकता है, और जो सत्य नहीं समझना चाहता, जो भ्रम में रहना चाहता है, उसको कभी नहीं दिखेगा। पश्यन अपि न पश्यति, तो ये यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज से, महाभारत में वर्णन आता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर में क्या बताते हैं, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषान स्थावर निच्छन्ति किमाश्चर्यतः परम। तो एक व्यक्ति हर दिन देख रहा है मृत्यु हो रही है, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, है ना, हर कोई यमलोक जा रहा है, यमलोक जा रहा है मतलब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वो देख रहा है उसके पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में, मतलब समाज में देख रहा है कि सब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, शमशान भी जाएगा दाह संस्कार के लिए, हाँ। लेकिन वो स्वयं क्या सोच रहा है कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ, और प्लानिंग कर रहा है कि कल मुझे ये करना है, अभी वो करना है, ये करना है, वो करना है, हैं? इस तरह से प्लानिंग कर जा रहा है कि जैसे कि वो पक्का है कि कल तक वो रहेगा इस शरीर में। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ, इसलिए वो ये प्रश्न ही पूछता है कि मेरे साथ भी यही होने वाला है। ऐसे बुद्ध देव का वर्णन आता है ना, सिद्धार्थ जो राजकुमार होते हैं, तो जब वो जाते हैं तो ये चारों चीजें देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हैं? तो जब वो ये चारों चीजें देखते हैं तो वो अपने सारथी से प्रश्न करते हैं कि क्या ये मेरे साथ भी होगा। नेचुरल क्वेश्चन आता है, क्या है वो देखते हैं कैसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य से ले जा रहे हैं, तो सिद्धार्थ ने कभी देखा नहीं होता ये क्या है, ये है ऐसे एक व्यक्ति से लेटा हुआ है और उसको चार लोग ऐसे ले जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ पूछता है सारथी से कि क्या है, इस व्यक्ति को ऐसे कहाँ ले जा रहे हैं। तो सारथी बताते हैं ये दरअसल मर गया है, मृत्यु हो गई उसकी। तो सिद्धार्थ पूछते हैं मृत्यु ये क्या होता है। तो सारथी बताते हैं मृत्यु मतलब एक दिन जो है हम शरीर छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे तो हर कोई, ये हर किसी के साथ होता है। हाँ सबके साथ होगा, तो मेरे साथ भी होगा। हाँ आपके साथ भी होगा, और सारथी बोलता है मेरे साथ भी होगा। तो सिद्धार्थ उस समय सोचते हैं सर ये क्या है, मुझे तो नहीं चाहिए, मृत्यु क्यों आ रही है, मुझे क्यों छोड़ना, मैं तो हमेशा सदैव जीना चाहता हूँ, तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है जिसमें मुझे मरना पड़ेगा। तो वो फिर सब जो है अपना राजपाट छोड़ के उस प्रश्न के उत्तर में निकल जाते हैं। तो ये एक व्यक्ति का लक्षण है जो सच में देख रहा है, हाँ सच में वो देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है और पूछ रहा है कि सच में मेरे साथ भी होगा। लेकिन जो ये प्रश्न ही नहीं कर रहा है कि मेरे साथ भी होगा, तो इसका अर्थ क्या है, वो देख ही नहीं रहा है। तो इसलिए शास्त्र में वर्णन है उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, पूछ नहीं रहा है वो कि ये मेरे साथ भी होने वाला है तो इसका समाधान क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, हाँ? हर जगह वो मृत्यु देख रहा है लेकिन खुद के लिए कभी ये प्रश्न ही नहीं कर रहा है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, और वो ऐसे जी रहा है जैसे कि हमेशा जीने वाला है, ऐसे प्लानिंग कर रहा है, लेकिन सारे प्लान खत्म हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे जब मृत्यु आएगी। तो भगवद गीता में इसलिए भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरस्व हम, मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ और सब कुछ हर लेता हूँ सबका। कालोऽस्मि हम, मैं काल हूँ। तो जो नास्तिक लोग हैं तो उनके लिए भगवान ऐसे मृत्यु के रूप में आते हैं, सब कुछ हर लेते हैं, और उनका जो घमंड है, अहंकार है, वो मृत्यु के समय टूटता है उस असहाय स्थिति में। और जो भक्त हैं उनके लिए मृत्यु जो है वो भगवान के धाम जाने का और भगवान के साक्षात दर्शन करने का एक अवसर होता है। तो भक्तों के लिए मृत्यु एग्जैक्टली मृत्यु नहीं है, वो एक शाश्वत जीवन का द्वार खुल रहा है उनके लिए दरअसल। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति है, पाप कार्य में लिप्त है, तो वो तो नरक की ओर जा रहा है। तो इसलिए हमें भगवान की ऐसी दिव्य लीलाओं से ये समझना है, भगवान का जो चरित्र है, भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करते हैं, और कैसे भगवान भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, ये हमें अच्छे समझना होगा। तो हमारा जो संबंध है जिसको हम भूल गए, भगवान के साथ पुनः स्थापित कर सकते हैं। हम किसी भी रस में हो सकते हैं, लास्य रस है, वात्सल्य रस है, साख्य रस है, माधुर्य रस है, सारे जितने भी हम भौतिक जगत में इतने भी संबंध देख रहे हैं वो सब भगवान के साथ संभव है पूर्ण रूप में। और आत्म साक्षात्कार जो भक्ति योग है उसका लक्ष्य यही है, उस संबंध को पुनः स्थापित करना। तो भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, लेकिन क्या हम तैयार हैं? ये हमें पूछना होगा। भगवान तो तैयार है, भगवान वेट कर रहे हैं कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा। और जैसे ही भगवान देखते हैं कि कोई गंभीरता से प्रयास कर रहा है उनको समझने का, तो वो अपनी कृपा उस पर बरसाने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमें भक्ति में गंभीर होना होगा, गंभीर अर्थात सारे नियम जो है उसे समझना होगा, नियमों का पालन करना होगा, गुरु आश्रय जो प्रामाणिक गुरु है उनकी शरण लेनी होगी, उनके मार्गदर्शन में भक्ति योग में अपने आप को नियोजित करना होगा, तो हम जो है वो संबंध पुनः स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चक्र चलता रहेगा। ठीक है, हम ऐसा बात करेंगे। किसी और कोई प्रश्न है? माइक है? माइक आवाज नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए।
जैसा आपने बताया कि हम भगवान से संबंध स्थापित कर रहे हैं किसी भी रस में, आनंद विद्यमान ही भगवान और मानो उनसे जैसे यशोदा मैया आए हैं और साक्षात संबंध है, वो ना हो के इसलिए हम संसार में सबसे संबंध बनाना प्रयास करते हैं,
तो इसलिए हमें वैष्णवों से वो संबंध बनाना चाहिए जो भगवान के भक्त हैं। तो उनके साथ जो है हमें मित्रता और जो असली जो जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, कि मैं सारे जीवों का परम हितैषी हूँ। जिस प्रकार भगवान परम हितैषी हैं, उनके जो भक्त हैं वो भगवान से भी और कृपालु हैं। तो इसलिए हमें अगर हम ऐसे संबंध बनाना भी चाहते हैं तो हमें भक्तों से बनाना चाहिए। ये जो भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए जो गंभीर हैं वो इस प्रकार उनका आचरण होना चाहिए। क्योंकि एक बार जब प्रश्न पूछा गया चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव कौन है, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो वैष्णव का आचार क्या है? असत संग त्याग। तो जो भी असत संग है उसका त्याग और जो सत्संग है उसको अपना। तो ये तो इसलिए है जो तो हमारा जो भी संबंध है उसमें केंद्र भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो वो संबंध सही मतलब उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन जब अगर इंद्रिय भोग अगर केंद्र है संबंध में तो उसमें उसका परिणाम क्या है, कोई भी उसमें संतुष्ट नहीं होगा, वो फिर बिखर जाएंगे। इसलिए हम देखेंगे आजकल परिवार बिखर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि सब अपना अपना इंद्रिय भोग जो है उसको केंद्र में रखा है। तो अहंकार केंद्र हो जाएगा तो क्या है, फिर आपसी मतभेद होगा, मनमुटाव होगा, सब बिखर जाएंगे। लेकिन जब भगवान की सेवा केंद्र है और उस केंद्र भगवान को केंद्र में रख के फिर हमारे संबंध हैं, तो जो है वो साथ में रह सकते हैं, वो संबंध जो है वो टिकेगा और उसमें दोनों संतुष्ट रहेंगे, उसमें जो है लोग संतुष्ट रहेंगे। तो इसलिए जो भी संबंध है हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण को केंद्र में रख के उस संबंध को हम स्थापित करें। तो इसका क्या ये अर्थ है कि जो हमारे परिवारजन हैं जो कि भक्ति में इतने गंभीर नहीं है उनको छोड़ दिया जाए? अब इंडिया टीवी वाले आ जाएंगे है इंटरव्यू लेने। एक्चुअली शास्त्र में बताया है कि जो ये मतलब जो हमारे भौतिक संबंध है उसको हमें निभाना है जब तक हम कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से हमारे हृदय में उदय ना हो जाए, तब तक हमें उन संबंधों को एज ए कर्तव्य, एज ए ड्यूटी निभाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर बहुत ही विपरीत स्थिति है कि हम कृष्ण भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कभी कभी किसी किसी केस में जो मतलब बहुत ही सीवियर केस होते हैं उसमें डिपेंड करता है, तो अगर वो स्थिति में है कि उसको आसक्ति नहीं है किसी चीज़ से तो वो छोड़ सकता है, क्योंकि वो छोड़ के अगर श्री कृष्ण की पूरी शरण ले रहा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो अपने कर्तव्यों को छोड़ के दूसरे प्रकार के इंद्रिय भोग में अगर लग रहा है, जैसे अभी जैसे हम यही उदाहरण लेके जैसे ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी अपने माता पिता को छोड़ के कृष्ण की सेवा में लग रहा है तो उसमें गलत नहीं है, शास्त्रों के अनुसार वो गलत नहीं है वो, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण जो है वो परम पिता है, तो इसलिए वो गलत नहीं कर रहा है, वो परम पिता की शरण में जा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। माता पिता समझ नहीं रहे वो उनकी गलती है। लेकिन अगर वहीं पर अगर वो माता पिता को छोड़ के लड़की के साथ भाग जाता है अर्थात अपने इंद्रिय भोग के लिए, तो वो गलत है, क्योंकि वहां पर ब्रह्मचारी जो है परम कर्तव्य का पालन कर रहा है तो इसलिए वो गलत नहीं है, वो सही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जो कर्तव्य था माता पिता की सेवा करना, उनको पालना, मतलब उनको देख रेख करना, उसको उनको छोड़ के वो अपने इंद्रिय भोग के लिए जा रहा है, तो वो गलत है। तो इसलिए कृष्ण की सेवा में अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो विघ्न है, तो अगर व्यक्ति बहुत गंभीर है तो उस केस में छोड़ सकता है, अन्यथा वैसे उस स्तर पे आना इतना आसान नहीं है, राइट? तो क्या आप छोड़ने का सोच रहे हैं? अभी पहले भक्ति ग्रहण करने का सोचिए, है ना, पहले हमें भक्ति में स्थित होना है, पहले भगवान को समझना है, वो तो जो छूटना है वो तो छूट ही जाएगा। कई बार हमसे लोग बोलते हैं कि आपने अपने घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, बहुत गलत किया सब किया, तो मैं उनसे यूजुअली यही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है मैंने छोड़ा, आप लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा, बस फर्क ये है कि मैंने स्वेच्छा से छोड़ दिया, आप लोग जबरदस्ती छोड़ेंगे, जब मृत्यु आएगी तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, तथाकथित जो भी है मेरे माँ मेरे पिता मेरा घर मेरा पुत्र सब छोड़ना पड़ेगा जब मृत्यु आएगी तो। ऐसे हमें पता नहीं हमारे पूर्व जन्म में कौन थे हमारे माता पिता, कौन हमारे परिवारजन थे, सबको छोड़ दिया हमने, तो बहुत गलत किया, वेरी बैड है। तो यस, अगर हम भगवान की दृष्टि से देखें तो कोई अगर भगवान की शरण में जा रहा है और उसके लिए आवश्यक है कि उसे इन संबंधों को छोड़ना पड़ रहा है तो ठीक है, वो सबके लिए अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं बताया सबको ऐसा करना है। जैसे यहाँ भगवान अर्जुन को जब भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो अर्जुन को वो प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन वही हम भागवतम में देखेंगे सेम उपदेश भगवान उद्धव को देते हैं, भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, तो वहाँ उद्धव को भगवान कहते हैं अब तुम सब कुछ छोड़ के जाओ, कहाँ, बद्रिका आश्रम, नर नारायण ऋषि के आश्रम में सारा राजपाट सब छोड़ के पड़ जाओ। तो समय और स्थान के अनुसार जो है डिपेंड करता है कि वो कैसे जो शास्त्रों के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, पर पॉइंट जो केंद्र है हमें जो भी कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है उस परिस्थिति को स्वीकार करना है, और जो भी प्रतिकूल स्थिति है उस स्थिति को त्यागना है, उन चीज़ों को छोड़ना है जो भी कृष्ण की सेवा में अनुकूल नहीं है, और जो भी कृष्ण की सेवा में अनुकूल है उसको हमें अपनाना है। हाँ, हाँ नहीं, तो भक्ति नहीं करना चाहते उनका ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारी भक्ति में विघ्न नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भी भक्ति मत करो। हाँ, क्या करते हैं, हाँ नहीं तो छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? नहीं आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं? नहीं, आने का मतलब है पूर्ण रूप से आना, फिर जाना नहीं वापस। हाँ, अगर आप उस स्तर पे हैं कि आके फिर वापस ना जाएं तो बिल्कुल आ सकते हैं, आमंत्रण है। इनफैक्ट वानप्रस्थ अर्थात 50 साल के बाद, 50 वर्ष के उपरांत ग्रह त्याग करना है। हैं? हाँ तो वही ना, तो आप अभी वो जिम्मेदारी है तो उसको, यस, तो आप अभी कृष्ण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसको अभी आप प्राथमिकता नहीं दे पा रहे, तो तब तक आपको वो कर्तव्य निभाना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब तक कृष्ण प्रेम का उदय नहीं हुआ है तब तक ये सारे कर्तव्य निभाने हैं, शास्त्र इसलिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो व्यक्ति ये सारे रिश्ते नाते छोड़ के अगर कृष्ण की शरण में जा रहा है तो गलत नहीं है। यस, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप आ सकते हो पूरे रूप से 24 घंटे भगवान की सेवा ले सकते हो तो यस आइए। छोड़ने वाली बात नहीं है, कृष्ण को अपना रहे हैं क्या? कृष्ण की पूरी शरण ले रहे हैं क्या? जो छूटना है वो तो छूट ही जाएगा। हैं? यही तो भ्रम है। देखिए, अब ये एक भ्रम है, हम सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है वो मेरे ऊपर आश्रित है, मैं अगर उनका पालन पोषण नहीं करूंगा तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मतलब हम ये नहीं समझ रहे कि भगवान दरअसल सबका ध्यान रख रहे हैं, अल्टीमेटली सब भगवान पे निर्भर है, वो हम नहीं समझे। हाँ तो ठीक है ना, तो ठीक है, तो आप कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहे ना अभी, तो इसलिए अभी आप मत छोड़िए, अभी आप उनकी सेवा करिए और जितना भक्ति को पहले समझिए, पहले कृष्ण कौन है उसको समझिए, पहले कि कृष्ण सर्वशक्तिमान हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कोई उनकी शरण में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट समझना है हमें कि अगर एक व्यक्ति अगर किसी इस भौतिक जगत के स्वामी की शरण में जाता है, उसकी सेवा करता है, तो वो तथाकथित जो बॉस है वो भी ध्यान रखता है उस सेवक का, उसकी जरूरतों का। तो हमें ये विश्वास नहीं कि अगर हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो कृष्ण ध्यान नहीं रखेंगे हमारा, यही तो पॉइंट है प्रैक्टिकल। सी यही तो है, देखिए माया जो है, माया हमें ऐसे ही बताती है कि कृष्ण भक्ति जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, कृष्ण की पूर्ण रूप से शरण लेना वो तो इम्प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो कैसे प्रैक्टिकल, उसको समझने का प्रयास करिए भैया। पहले देखिए, इसलिए हम कहते हैं जो छोड़ना है उस पर आप फोकस मत करिए, जो भी छूटना है वो तो छूट जाएगा, काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, हम सब समय के अंदर हैं और एक समय आएगा जब सब कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए जो छूटना है उस पर फोकस मत करिए, फोकस किस पे करिए, जो हम कौन है, हम शाश्वत हैं, आत्मा है हम, और ये भगवान का अंश है, श्री कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण कौन है उस पर मनन करिए, उस पर फोकस करिए कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा उनका संबंध है, उस पर फोकस करिए। तो छूटना है तो छूट जाएगा, उसको आप किसी भी चीज को आप रख नहीं पाओगे कभी भी, समय का प्रभाव है, हैं? हाँ, तो इसलिए अभी आप निभाइए, इसलिए हम बताते हैं कि आप कर्तव्य को निभाइए और जो है कृष्ण कौन है वो समझने का प्रयास करते रहिए, राइट। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रेमामृतम बनिधि धीराधीर जन प्रियौ प्रिय करौ।